તારીખ 14/8/1994 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 100.
શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક, સાતમા અધિકાર, જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિકા સ્વરૂપ. ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. ये बात चली है कि जैन साधु दीक्षाधारी होता है किंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है तो पहले गुण स्थान वाला है और सम्यक दृष्टि ग्रस्त चतुर्थ गुण स्थान वाला है. इसलिए जिनागम में साधु को हीन बताया है और सम्यक दृष्टि को उत्कृष्ट बताया है. इसके आधार देते हैं. समयसार शास्त्र में उभयाभाषी का आखिर का पहला समयसार शास्त्र में द्रैलिंगी मुनि की हीनता गाथा टीका और कलशों में प्रकट की है. समयसार एक महान शास्त्र है, उसकी गाथा टीका और कलशों में द्रैलिंगी मुनि है वो हीन है और सम्यक दृष्टि है वो इससे आगे है. ये बात अन्य शास्त्रों में भी आती है. तथा पंचास्ती का टीका में जहाँ केवल व्यवहारालंबी का कथन किया है 172 गाथा, वहाँ व्यवहार पंचाचार होने पर भी व्यवहार का पंचाचार दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की है कि वो हीन है. इसलिए हीन है वो कि वो कर्मफल चेतना और कर्म चेतना में पड़ा है, ज्ञान चेतना प्रकट नहीं हुई है, जबकि सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना प्रकट हुई है. गुणस्थान भी इसका आगे का है. तथा प्रवचन सार में संसार तत्व द्रविलिंगी को कहा है. पिछली 5 गाथा में पंचरत्न लिया ने, समय सार का आधार दिया, प्रवचन सार का आधार दिया, पंचास्तिकाई का आधार दिया और परमात्मा प्रकाश, इतना 4 शास्त्रों का आधार दिया है टोडरमल जी ने. प्रवचन सार में द्रविलिंगी को संसार तत्व कहा है. परमात्मा प्रकाश आदि अन्य ग्रंथों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है. तो ऐसी बात और भी ग्रंथों में आगमों में आई है. मैंने ये सिर्फ पंडित जी कहते हैं वो बात नहीं है, महान आचार्यों ने भी यही बात कही है, फिर भी नहीं मानते मोक्ष और प्रकाशक की बात. पर द्रविलिंगी को जो जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती है उन्हें भी इन शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बतलाया है. द्रविलिंगी को जप तप शील संयम त्याग होता है लेकिन उसका मोक्षार्थ कोई कार्यकारी पड़ा नहीं है, वो संसार अर्थ होता है, मोक्षार्थ नहीं होता है. क्योंकि मूल में जो धर्म की शुरुआत होनी चाहिए वितराग भाव रूप, वो वितराग भाव चालू नहीं हुआ है, अशुभ छूट कर शुभ हुआ है, उतनी बात है. वो तो अन्य मति भी करते हैं. सो वहां देख लेना, उन शास्त्रों में देख लेना. यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं, हम आधार देते हैं लेकिन इतना शास्त्र आधार देने से ग्रंथ बढ़ जाता है, इसलिए नाम दे देते हैं, पढ़ लेना. तो ऐसे करने में जिसको जिज्ञासा है वो अन्य ग्रंथ का भी स्वाध्याय करेगा. वो जिज्ञासा वृद्धि है तो नहीं दिया, कभी आधार देते भी है तो वहाँ उसका ठोस पड़ा दिखाने के लिए देते, कभी नहीं देते हैं तो जो पाठक है उसकी जिज्ञासा को सतेज करते हैं, ऐसा लेना. इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया कि अब दो प्रकरण चला। पहले निश्चयाभासी जो है जैन है फिर भी निश्चयाभासी है, उनकी बात बताई कि उसकी कैसे भूल होती है। फिर जो केवल व्यवहाराभासी है वो मिथ्या दृष्टि रहता है, भले दीक्षा अंगीकार करता है तो भी निष्फल है, वो बात बताया। अब उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे। उभयाभासी मैंने दोनों का आभास हो, थोड़ा निश्चय का भी आभास हो, थोड़ा व्यवहार का भी आभास हो, ये ज्यादा खतरनाक है। क्या सबसे कम खतरनाक है? निश्चयाभासी। इससे ज्यादा खतरनाक है व्यवहाराभासी, और इससे ज्यादा खतरनाक है उभयाभासी। तो क्रम लिया है, प्रतिपादन करने में भी क्रम लिया है, क्योंकि निश्चयाभासी को अशुभ भाव ज्यादा होता है तो कभी न कभी उसको लाइट हो जाएगी कि ये गड़बड़ है, मुझे दुख हो रहा है, आकुलता बढ़ जाती है। व्यवहाराभासी मंद कषाय में फंस जाता है, निश्चयाभासी तो न क्रिया करता है न शास्त्र पढ़ता है, तो उसको तो कभी न कभी जागृत होने का मौका मिलता है। व्यवहाराभासी शास्त्र भी पढ़ता है और क्रिया भी करता है, और दोनों में अयथार्थ पड़ा है तो वो फंसता है। और उभयाभासी तो उसको लगता है कि मैं तो निश्चय को भी अंगीकार करता हूँ और व्यवहार को भी अंगीकार करता हूँ, मेरी तो भूल है ही नहीं, तो उसका तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, नयों का अवलंबन नहीं लेते हैं, नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। दोनों नयों से नयों के विषय में गड़बड़ करके उसी का नाम आभास है, जो नय है नहीं लेकिन नया आभास है, नय से आगे पीछे कर देना, नय के प्रमाण में नय के अनुपात में नहीं चलना, गड़बड़ कर देना, वो नया आभास है।
सच्चा
मुमुक्षु आभास में नहीं आता है, तो नामधारी मुमुक्षु है वो आभास में आता है। तो कोई निश्चयाभासी होता है, कोई व्यवहाराभासी होता है, कोई उभयाभासी होता है, तीनों प्रकार होता है, कोई एक प्रकार हो गए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुमुक्षु है इसलिए निश्चयाभासी ही है या व्यवहाराभासी ही है या उभयाभासी ही है। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि हमारे जो समाज है उसमें कौन सा आभास ज्यादा है, नहीं समष्टिगत ले लेवे कि हमारे यहाँ आभासी होते हैं तो कौन सा आभास ज्यादा होता है, जो नहीं होते हैं उनकी तो बात है नहीं, होते ज्यादा उभयाभासी होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग ज्यादा चतुर है, शास्त्र पढ़ते हैं, निश्चय के विषय की भी बहुत चर्चा करते हैं, व्यवहार की भी बहुत चर्चा करते हैं, और दोनों में गलती करते हैं तो उसको उभयाभासी हो जाता है कि देखो हम सुबह पूजा भक्ति भी कर लेते हैं, फिर शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं, और दूसरी क्रिया में हम पढ़ते नहीं है, उपवास आदि की दूसरी क्रिया में हम नहीं जाते, तो उस तरह से ज्यादा उभयाभासी हो सकते हैं, इतनी बात है। हाँ, वो ज्यादा खतरे में है, उसका खतरा ज्यादा है, इसलिए अपने को सावधान में ज्यादा रखने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को इस विषय में ज्यादा जागृत रहना है। हाँ, ये अधिकार ऐसा लेना आएगा, सब ऐसा ही आएगा, भूल हो जाए ऐसी बात होगी। जो जीव ऐसा मानते हैं ये जीनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नहीं कहे हैं, कहते हैं, इसलिए हमें उन दोनों को अंगीकार करना चाहिए। भगवान की वाणी में तो दोनों नहीं की बात चली है, हमको दोनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभासी के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं। निश्चय के पहलू में जो निश्चयाभासी की गलती है वो चालू रखता है, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था जो आगे चल गया, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। दोनों का दोनों पहलू में वो आभास की भूल चालू रखता है, मतलब निश्चयाभासी एक भूल करता है, व्यवहाराभासी भी एक भूल करता है, और उभयाभासी दो भूल करता है। वो अगले के दोनों की एक एक भूल है, ये दोनों दो भूल है, इधर डबल भूल है इसका, वो डबल अपराधी है,
डबल अपराधी,
ऐसी बात है। व्यवहाराभासी जो भी स्वभाव होता है उसमें संतुष्ट होता है, राजी होता है, और कुछ न कुछ आत्मकल्याण का वो साधन मान लेता है, जान करके या अनजान करके वो आत्मकल्याण का साधन, मोक्ष का साधन वो मान लेता है। वो व्यवहाराभासी की भूल है, नहीं मान, हाँ ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाँ वो बाना पकड़ता है, व्यवहाराभासी ऐसा बाना पकड़ता है कि देखो ज्ञानी भी अशुभ को छोड़कर शुभ में आते हैं, तो मैं भी ऐसा करता हूँ। तो फिर पंडित जी ने क्या स्पष्टीकरण दिया कि ज्ञानी तो शुभ में आते हैं अशुभ को छोड़कर, उस वक्त शुभ का निषेध करता है, पर तुम अशुभ छोड़ करके शुभ में आता है तो उसका निषेध नहीं करता हो, उसको कर्तव्य समझ लेते हो, यही गलती है। व्यवहाराभासी मैंने शुभ की उपादेयता, क्या शुभ की उपादेयता संक्षेप में लेवे तो, और निश्चयाभासी का संक्षेप लेवे तो मुंह से शुभ का निषेध और अशुभ की उपादेयता कि उसको विषय कषाय में अच्छा लगता है और शुभ का बोलने में निषेध करता है, और शुभाचरण को त्याग कर देता है कि नहीं वो तो बंद का कारण है, वो तो अशुभ बंद का कारण है, वो उसको भान नहीं है, पर शुभ बंद का कारण है, छोड़ो उसको। तो उसको तो क्या है कि बोलने में विकल्प में शुभ के शुभ का निषेध है और अशुभ का आदर हो जाता है, क्यों उसमें अच्छापन लगता है, मजा पड़े सहने गर्मी के दिनों और ठंडी हवा है तो हाँ अच्छा हुआ, अच्छी लहर आई ठीक, और शुभ भाव करे नहीं 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 ये तो बंद का कारण है, ये नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, भक्ति नहीं करना है, स्वाध्याय नहीं करना है, दयादान नहीं करना है, बंद का कारण होता है। तो एक को अशुभ उपाधि है, एक को शुभ उपाधि है, या दोनों गलती करेगा, कभी ऐसा भी करेगा शुभ का भी निषेध करेगा, कभी अशुभ का भी निषेध करेगा, दोनों में गलती रहेगा। और मानेगा कि मैं सबसे आगे हूँ, क्या मानेगा, भूल तो डबल करेगा, और मान्यता में वो होगा कि नहीं मैं तो निश्चय व्यवहार दोनों को अंगीकार किया है, मेरी तो भूल है ही नहीं, मैं कोई न्याय निश्चयाभाषी भी नहीं, मैं कोई व्यवहाराभाषी भी नहीं, लेकिन तुम उभयाभाषी हो इसका क्या। उभयाभाषी का प्रकरण टोडरमल जी ने जैसा लिखा है ऐसा कम जगह मिलता है, क्योंकि जो निश्चय प्रधान शास्त्र होता है या व्यवहाराभास का निषेध बहुत जोर से आता है, जो व्यवहार प्रधान शास्त्र होता है उसमें निश्चयाभास का निषेध जोर से आता है। पंडित जी ने अपना दिमाग लगा करके दोनों का आभासी को पकड़ा है, और वो भी करुणा करके ऐसी गलती भी मिटाई है।
निश्चय
ऐसे कि निश्चय स्वरूप की उपाधिता में व्यवहार सहज सहज हो जाता है, करना पड़ता नहीं है, पर हो जाता है तो उसका निषेध आता है निश्चय के आश्रय करने के बल से, जोर से ऐसा होता है। और वो प्रकरण आठवां अधिकार से चलेगा। सातवां अधिकार तो मिथ्या दृष्टि जैना भाषियों का है, फिर जो आठवां अधिकार है यहाँ से वो शुरू करेगा कि देखो उपदेश कैसा है, सही उपदेश कैसा होता है। और नौवां अधिकार से मोक्ष मार्ग की शुरुआत करते हैं। उपदेश का स्वरूप आठवां अधिकार है और नौवां अधिकार है उसका टाइटल है, नाम क्या दिया है, आठवां। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, हाँ मोक्ष मार्ग, मैंने ज्ञानी मोक्ष मार्ग ये उसका स्वरूप, नौवां अधिकार से आएगा। ये अधिकार लिख लिया, अच्छा हुआ, फिर भी शास्त्र अधूरा रहा है, बहुत लिखने का उनका भाव था, लोगों का नसीब नहीं था, नहीं लिखा,
कमाल कर दिया,
इतना लिखा है फिर भी बहुत बातें आई है, बहुत बातें आई है। हाँ उसके पर प्रवचन है, वो ये अधिकार पर तो छपा हुआ है, सातवां अधिकार पर तो प्रवचन छपा हुआ है। देखो यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। अब स्पष्टीकरण देते हैं कि कम से कम इतना तो देखो कि दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करे क्या, दोनों नयों का परस्पर विरोध है और छोड़ा तो नहीं जाता है, एक भी नई को छोड़ा नहीं जाता, ऐसा मान रखा है उसने। सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित नहीं हुआ नहीं, क्या गलती रही है, अपने में अपनी सूझ नहीं आई है कि ये व्यवहार नहीं का स्वरूप क्या है, निश्चय नहीं का स्वरूप क्या है, वो तो उसको भाषित नहीं हुआ है। और जिन मत में दो नहीं कहे हैं वो उसको पता है, समझ में है कि दो मत तो भगवान ने कहा है, उनमें से किसी को थोड़ा छोड़ा भी नहीं जाता, दोनों को कैसे छोड़े, भगवान ने बोला है, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, थोड़ा वो भी करो थोड़ा वो भी करो। ऐसे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना, वे भी मिथ्या दृष्टि है, अभी मिथ्या दृष्टि है तो इनकी प्रवृत्ति कैसी है, गड़बड़ वाली प्रवृत्ति कैसी है वो बताते हैं। अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बताते हैं, वो क्या क्या करता है कि अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, क्या जाना नहीं, वो नहीं लिखा, क्या लिखा है कि अंतरंग में अपने तो निर्धार करके, अपने अंतरंग में निर्धार करके यथावत मैंने जैसा है वैसा निश्चय मोक्ष मार्ग कैसा है, और निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ सहचारी व्यवहार मोक्ष मार्ग के परिणाम कैसा है, वो दोनों परिणाम को वो पहचानता नहीं है। शास्त्र पढ़ने से जान लेता है लेकिन अंतरंग से पहचानता नहीं है, पहचानना अलग बात है, जानना अलग बात है। हम सोने को सोना कहते हैं लेकिन हम पहचानते नहीं है, वो तो जो कसौटी पर घिस करके बता सकते हैं वही पहचानता है, बाकी पैसा देने वाला खरीद करता है सोना, ये जॉनसन की लगड़ी है, ये भाव है, लाओ हमको दे दो, नकली आ जाएगी तो उसको पता चलेगा नहीं, क्योंकि पहचान नहीं है। हाँ फिर तो वही होगा, गड़बड़ होने से तो वही होगा, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय शास्त्र पठन गुरु आज्ञा के अनुसार करना चाहिए, या गुरु के चरण में रह करके शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए तो सोनगढ़ में अपने मुमुक्ष लोग बसते थे, वही कारण से बसते थे कि ठीक है गुरुदेव क्या कहते हैं, अपने आप को अपने को समझ में नहीं आता है, गुरुदेव खोल खोल करके समझाते थे। जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं कि दो मोक्ष मार्ग है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग को दो मानते हैं, जबकि मोक्ष मार्ग एक ही होता है, दो मोक्ष मार्ग होता
नहीं।
दो भी नहीं होता है, तीन भी नहीं होता है, अनेक भी नहीं होता है, मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है, निरूपण दो प्रकार का है प्रधान रूप से, फिर तो अनेक प्रकार का कह सकते हैं, लेकिन प्रधान रूप से दो प्रकार का है, निश्चय प्रधान और व्यवहार प्रधान। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को यानी निश्चय मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, सो तो निश्चय मैंने सच्चा मोक्ष मार्ग है। निश्चय का अर्थ क्या है? सच्चा, वास्तविक, खरेखर, उसका नाम निश्चय। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, सो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, तो क्या है वो? मोक्ष मार्ग नहीं है तो क्या है? कि बंध मार्ग है। जो जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। दो प्रकार की बात किया, जो मोक्ष मार्ग नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त जान करके, या सच्चा मोक्ष मार्ग के साथ साथ जो यथा योग्य व्यवहार के परिणाम होते हैं, अयोग्य नहीं, योग्य व्यवहार के परिणाम होता है, उनको मोक्ष मार्ग कहने का व्यवहार है। जैसे पड़ोसी को चाचा कहने का व्यवहार होता है, मामा कहने का व्यवहार होता है, मौसा कहने का व्यवहार होता है कि नहीं होता है? वास्तव में कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी से कुछ न कुछ ऐसा व्यवहार करने में आता है, घनिष्ठता बताने के लिए ऐसा व्यवहार करने में आता है। वरना वो तर्क निकालेगा कि ऐसा गलती हो जाए, ऐसा क्यों निरूपण किया दो प्रकार का? उसमें भी हेतु है कि व्यवहार भी व्यवहार के स्थान में उचित ही मोक्ष मार्गी को होता है, अनुचित व्यवहार मोक्ष मार्गी को नहीं होता है। यही कारण से, उसी कारण से, एक तो वो कारण है, दोष की मर्यादा भी होनी चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि बाकी का जो दोषित परिणाम रहा वो जैसा कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, उसका भी गुणस्थान अनुसार अलग अलग दर्जा है व्यवहार का। ऐसा वो इसको इसलिए उसको जिनोक्त व्यवहार कहने में आया है, तो भगवान ने जिनेन्द्र देव ने चौथा चतुर्थ गुण स्थान वाले, पंचम गुण स्थान वाले, छठे गुण स्थान वाले का व्यवहार है वो तो निश्चित किया है। उसमें जो गड़बड़ करता है, देश काल के बहाने किसी के बहाने गड़बड़ करता है, वो तो भगवान की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, सर्वत्र मैंने लोक में भी ऐसा ही स्वरूप है, लक्षण मैंने स्वरूप, निश्चय व्यवहार का स्वरूप सर्वत्र ऐसा है, लोक में भी ऐसा है। जैसे पानी के बर्तन जो होता है तो बर्तन का नाम भी पानी दिया जाता है, पानी का गोला, पानी का गिलास, पानी का लोटा। तो पानी का होता है क्या?
नहीं,
मिट्टी का धातु का होता है, लेकिन बोलने में ऐसा आता है। तो सर्वत्र ऐसा ही स्वरूप है, बोलने की व्यवहार पद्धति ऐसी होती है। हाँ, घी का घड़ा। घी का घड़ा है क्या?
नहीं,
बोलने में तो ऐसा ही आएगा।
तो समझ लेते हैं,
वो क्या है कि पूर्व मिथ्या आग्रह है, जो पूर्व गृहित मिथ्या आग्रह है, उसको जो जीव छोड़ना नहीं चाहता है उनको ऐसा होता है। जिनको ऐसा आग्रह नहीं है वो तो सच्ची बात समझ लेता है कि बराबर है, वो बात तो ठीक ही है। सच्चा निरूपण सुनिश्चय, सब कथन की बात चलती है कि सच्चा निरूपण वो निश्चय कथन, और उपचार निरूपण सो व्यवहार कथन। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, कथन की अपेक्षा से दो प्रकार जानना, परिणमन की अपेक्षा से दो प्रकार नहीं जानना। वो उसमें गर्वित हो गया, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग का परिणमन, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग का परिणमन है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, वो ग्रेत मिथ्यात में चला जाएगा। दो मोक्ष मार्ग मानने वाला ग्रेत मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, दो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं, आत्मा में एकाग्रता करना है तो आप चिंतन से करो, आप योग से करो, आप ध्यान से करो, आप शास्त्र पठन से करो, कैसे भी करो, आखिर में तो एक जगह आना है, एकाग्र होना है। ऐसा नहीं है, साधन भी नियत है, साध्य भी नियत है और साधन भी नियत है। कार्य पद्धति एक ही प्रकार की है, क्योंकि ये कोई रूढ़ि धर्म नहीं है। आत्मा एक पदार्थ है और उस पदार्थ को अपने आप का एक विज्ञान है, साइंस है। वो धर्म है वो साइंस है, विज्ञान है, इसलिए उसमें दो बात हो सकती नहीं है। तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपाधि मानता है, दोनों को मोक्ष मार्ग मानकर क्या भूल करता है कि दोनों को उपादेय मानता है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो पुण्य के परिणाम है, और निश्चय मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम है। एक बंध के परिणाम है, एक मोक्ष के है। तो मोक्ष के परिणाम को भी उपादेय माने और बंध के परिणाम को भी उपादेय मानता है, बड़ी गड़बड़ी है। तो वास्तव में वो बंध को ही उपादेय मानता है, मोक्ष के परिणाम को पहचानता नहीं है। नहीं जान करके हे करना, क्या हे करना, ज्ञान में गे करना, आचरण में हे करना। ज्ञान अपेक्षा से ज्ञेय है और ध्यान अपेक्षा से ये है। आचरण में ध्यान आता है, ज्ञान और ध्यान, तो ध्यान अपेक्षा से सुभाव का ध्यान करने योग्य नहीं है, सुभाव रूप ध्यान करने योग्य नहीं है। आएगा, बहुत स्पष्टीकरण आएगा, विद्याभाषी का स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया लिया है। मारा तो एक बोल टाइप में एक मोक्ष मार्ग वो दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है, उतना ही
लिया।
मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए। अब निमित्त है तो फिर निमित्त निमित्त जुटाएंगे तो उपादान हो जाएगा,
ऐसा नहीं।
निमित्त तो है ने, चलो मोक्ष मार्ग नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त तो है ने,
तो
ऐसे उसको उपाधि मानने से निमित्त निमित्त के स्थान में नहीं रहता, निमित्त व्यवहार के स्थान में नहीं रह करके व्यवहार निश्चय का स्थान ले लेता है। फिर से जो व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप शुभ भाव को उपाधि करके ग्रहण करता है कि चलो निमित्त तो है, तो वहां वो निमित्त नहीं रहता, व्यवहार नहीं रहता है, निश्चय हो जाता है। निमित्त मानकर तो व्यवहार को अंगीकार करता है तो व्यवहार व्यवहार के स्थान में नहीं रहता है, निश्चय का स्थान ले लेता है।
बड़ा
दोष हो गया, ये गड़बड़ हो जाती है, माने वो साधन नहीं रहता, वो साध्य हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा करो, ऐसे अपन अपना व्यवहार है शास्त्र स्वाध्याय का, तो ये साधन नहीं रहा, तो शास्त्र स्वाध्याय करना वो साध्य हो गया, ये बात हो जाएगी। हाँ, ये सूक्ष्म भूल है, हर जगह हो जाती है, वो क्रियाकांड को होता है उतना नहीं है, हम जो क्रिया करते हैं उस पर उसका ध्यान खींचना है कि कहीं वो साधन छूट करके साध्य तो नहीं हो गया, तो ये उभयाभाषी में आ गए हम, ऐसे वो भी आवास का भूल होता है इधर भी। कई लोग ऐसा करते हैं, सारे दिन का एक कार्यक्रम बना लो, सुबह उठ के ये करना, फिर वो करना, फिर वो करना, फिर वो करना, तो ये अपना साधन है, ऐसे करते करते अपना साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, वो साधन नहीं है, वो साध्य हो गया है, ये भूल रहेगी, तो इससे साध्य हो साध्य साधित होने वाला
नहीं,
साध्य नहीं सधेगा, कितने भी लंबा काल तक किए जाए साध्य सधेगा
नहीं,
ये गड़बड़ हो जाती है। परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, निमित्त है तो निमित्त पर जिसका वजन है उसको गड़बड़ हो जाएगी, वो सहचारी है, सहचारी है मैंने मोक्ष मार्ग के परिणाम के साथ साथ चलने वाला, उसको सहचारी कहने में आता है, उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उपचार का भी नहीं जानते, उपचार मैंने क्या कि जो नहीं है लेकिन कहना, जो चाचा नहीं है उसको चाचा कहना, मामा नहीं है उसको मामा कहना, उसी का नाम उपचार है। घी का घड़ा वो उपचरित कथन है, घड़ा घी का नहीं है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही स्वरूप है, लक्षण माने ऐसा ही स्वरूप है, सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, व्यवहार मैंने कहने मात्र, काका मामा कहलाने वाले हैं वास्तव में है
नहीं।
इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, कथन का पद्धति दो प्रकार का है, मार्ग दो
नहीं है।
श्रीमद जी ने तो कहा एक हो तीन काल में परमार्थ का पंथ, परमार्थ को निश्चय को धर्म को एक ही मार्ग है, दो मार्ग हो ही नहीं सकता।
सूत्र भी पहला है सूत्र जी में मोक्ष
मार्ग,
सूत्र तत्व सूत्र में पहला सूत्र एक
निश्चय मोक्ष मार्ग का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अच्छा वो सूत्र दोनों स्वीकारते हैं, श्वेतांबर दिगंबर दोनों
स्वीकारते
हैं, वो पूरा शास्त्र स्वीकारते हैं, लेकिन दोनों में गड़बड़ चलती है। सम्यक दर्शन का स्वरूप कोई नहीं जानते, बड़ी बात तो है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप तो कैसे जानेगा, और सम्यक चारित्र का स्वरूप तो कैसे जानेगा, सम्यक दर्शन का कोई स्वरूप नहीं जानते। गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन का स्वरूप 45 साल तक खोल खोल कर समझाया, जैसे सम्यक दर्शन तो ऐसी चीज है, उसका प्राप्त करने का विधि भी ऐसा है और जिसको होता है इसका स्वरूप भी ऐसा है, वो खोल खोल कर समझाया। संप्रदाय में कहीं सम्यक दर्शन का स्वरूप को मालूम नहीं है, इसलिए सब लगे हैं बाह्य क्रिया में। श्वेतांबर में उपवास आदि तप का ज्यादा है, क्रेज हो गया है, और दिगंबरों में पूजा का क्रेज ज्यादा है। बस ये पर्व के दिन आएंगे दस लक्षणे, पहले श्वेतांबर के पर्युषण आते हैं तो उपवास चलेगा लोगों का, और फिर वो आएगा दस लक्षणी पर्व तो पूजा की धमाल चलेगी। चलती है कि नहीं चलती है? गाज बाज के साथ ऑर्केस्ट्रा, आजकल तो बड़े बड़े सिटी में ऑर्केस्ट्रा ले आते हैं, संगीत का साधन ले आते हैं। भगवान की पूजा धाम धूम से सुबह से चालू किए, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक, कभी 4 बजे तक भी चलता है। कई लोग उपवास करते हैं, सारे दिन करते रहो। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वितराग भाव वो कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, वो बात ही छूट गई पूरी की पूरी। खर्चा चढ़ता है, 10 दिन का तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 11वां दिन कैसे चलेगा? उसका पैसा भी 10 दिन का ही देता है, वो 11वां दिन कैसे बजाएगा? वो भी धंधादारी होता है। इसलिए उन लोगों को पजोसनिया श्रावक कहने में आता है। भदैया श्रावक भादरवा में आवे, वो भदैया श्रावक बालको के पजोसनिया श्रावक छे। ठीक, अपने अपने पण ત્યાં થોડું ઘણું તો એવું છે કે રોજની સંખ્યા આપણે 50-60-70 ને રહીએ છે, પર્યુષણમાં 200-250-300 ની સંખ્યા થઈ જશે, તો બાકીના જે છે એ પજોસણિયા છે, એ પજોસણો જરા આવું પછી કાંઈ લેવા કે દેવા આમ છે। જેટલી સમજણ હોય એટલું માણસ કામ કરી શકે। તથા નિશ્ચય વ્યવહાર દોનો કો ઉપાધિ માનતા હૈ વહ ભી ભ્રમ હૈ, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। समय सार में ऐसा कहा है, इसका आधार देते हैं। व्यवहारो अभूयत्थो भूयत्थो देशी दो सुधनयो, पछी बाकी का मलिया है कि भूता 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 भूतार्थ आश्रित भूयत्थो भूतार्थ आश्रित सो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। समाधिठी हरि जीवो भूयत्थम मसिदो समाधिठी हरि जीवो, 11वीं गाथा नीचे है, लियो फुटनोट में आपी है। व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देशी दो सुधनो भूयत्थम मसिदो खलु समाधिठी हरि जीवो, बहुत सारा समयसार का सार भरा है इधर कि व्यवहार तो अभूतार्थ है और भगवान ने भूतार्थ को देशी दो मैंने उपदेश में सुधनी स्वरूप कहा है, और ये भूतार्थ आश्रित ही वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है, वही जीव सम्यक दृष्टि होता है, व्यवहार आश्रित होता नहीं है। बात तो खत्म कर दी है, एक एक गाथा में बात को पूरी कर दी है।
निश्चय में आगर वधी सकतो नथी એટલે વેવાર ઊભો રહે, નિશ્ચય માં આગળ વધી શકતો નથી એટલે વેવાર ઊભો રહે, વેવાર કરવો એવું કે
નહીં, પણ નિશ્ચયમાં જો આગળ ન વધી શકે પણ કાંઈ નિશ્ચય પ્રાપ્ત છે કે નહીં, આ સવાલ છે. જો પ્રાપ્ત ન હોય તો એકલો વ્યવહાર તો વ્યવહાર કહેવાતો નથી. નબળાઈ નહીં પણ ઊંધાઈ ને લઈને પોતાની વિપરીતતા લઈને અપને વિપર્યાસ કે કારણ નિશ્ચય કો નહીં પ્રાપ્ત કર સકતા. તો ફિર જો વ્યવહાર રહેતા હોય તો ઉનકો લગતા હોય કે મેરા પ્રયત્ન તો નિશ્ચય કા હૈ, લેકિન નિશ્ચય મુજે પ્રાપ્ત નહીં હોતા હોય તો મેં વ્યવહાર કો ચલાતા હું, વ્યવહાર તો નહીં છોડના ચાહીએ. પણ વ્યવહાર કો ભી છોડ દેંગે તો અતો ભ્રષ્ટ તતો ભ્રષ્ટ, નિશ્ચય સે ભી ભ્રષ્ટ ઓર વ્યવહાર સે ભી ભ્રષ્ટ હો જાયેંગે. અબ કરના ક્યા, યે સવાલ આતા હૈ કે અબ કરના ક્યા. સબસે પહેલે સત્સમાગમ સે, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય આદિ સે આત્મા કે નિશ્ચય સ્વરૂપ કી પહેચાન કરના, મોક્ષાર્થી હોકર કે. સત્સમાગમ સત્શાસ્ત્ર કા સ્વાધ્યાય મોક્ષાર્થી હોકર કે કરના, ઓર મોક્ષાર્થી હોકર કે ઇતના પ્રવૃત્તિ કરને સે વો પ્રવૃત્તિ કા હેતુ વો હોના ચાહીએ કે હમારા સ્વરૂપ સે હમ અનાદિ સે મૂળ સ્વરૂપ સે અનજાને હૈ, ઉસકી હમે પહેચાન કરના હૈ. પહેચાન હોને સે ફિર અનુભવ હોગા. ઓળખાણ થી એકાગ્રતા આવે, ઓળખાણ વિના કોઈને એકાગ્રતા ના આવે. ઉસ લાઈન પે જાના હૈ, દૂસરી લાઈન પે જાના નહીં હૈ. કૃપાળુદેવ ને બહુ શોર્ટકટ લે લિયા હૈ, ઉન્હોને લે લિયા કે તુમ મોક્ષાર્થી હોકર કે સત્પુરુષ કે ચરણ મેં શરણ મેં ચલે જા, જ્ઞાની કે ચરણ મેં જાને સે. કૈસી કિસ તરહ સે જાના કે આપ્ત પુરુષ કી વચન કી પ્રતીતિ આજ્ઞા રુચિ ઓર સ્વચ્છંદ નિરોધ ભક્તિ. પ્રતીતિ રુચિ ઓર ભક્તિ તીન પદ લિયા ઓર તીનો કા વિશેષણ લિયા. इस जगह पे आने से सम्यक दर्शन पाना है ना, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप है, तो पहला संकेत तुमको मिल जाएगा वहां. क्या पहला संकेत मिल जाएगा? आत्मा की पहचान कठिन है, लेकिन सत्पुरुष की पहचान उतनी कठिन नहीं है. क्यों? कि आत्मा है वो स्थिर ध्रुव सिद्ध है, और सत्पुरुष है वो हालते चालते सिद्ध है, चलते फिरते सिद्ध है, तो तुमको नजर आ जाएगा. जैसे हीरा खो गया है तो डरता हीरा है वो पकड़ने में आ जाएगा मोमेंट वाला, लेकिन कहीं जगह छिप स्थिर हो गया तो फिर नजर में आना मुश्किल है. तो ये चलते फिरते सिद्ध है, तो उसका पता चल जाएगा. સમ્યક દર્શન પહેલા સંકેત કહા હુઆ? સમ્યક દર્શન કા બીજ કા બીજ, યે સમ્યક દર્શન કા બીજ હૈ. બહુત લાઈન ક્લિયર કર દિયા, કોઈ દૂસરી ચિરફોડી મેં માથાફોડી મેં મત જાતા હું. એક સત્પુરુષ કો પહેચાન કરકે ઇસકે ચરણ મેં બેઠ જા, ઉસકી આજ્ઞા રુચિ સ્વચ્છંદ નિરોધ ભક્તિ વચન કી પ્રતીતિ મેં આ જા. શંકા મત ઉઠાના, પહેચાન કરને મેં તુમકો દેર લગે કોઈ બાત નહીં, પહેચાન કરકે એસા પરિણામ હો જાના ચાહીએ. તો તુમકો સ્વરૂપ કી પહેચાન હો જાયેગી, યે દૂસરા સંકેત હૈ, યા સંકેત કા અનન્ય કારણ હૈ. ઓર ફિર નિર્વિકલ્પ સમ્યક દર્શન આયેગા આયેગા ઓર આયેગા. સીધી
સીધી લાઈન
લાઈન દિખા દે કે આગે પીછે જાયેગા તો મર જાયેગા. ઇનકે જો બતાયે હુએ માર્ગ પર ચલે તો તીર જાયેગા, બસ ઇતની સી બાત હૈ. અપને આપકો નિર્ણય કર લેના વ્યક્તિગત રૂપ સે, વ્યક્તિગત રૂપ સે અપને આપકો નિર્ણય કર લેના કે હમ કઈ સ્વચ્છંદ કરતે હૈ કે નહીં કરતે હૈ, અપની મનમાની કરતે હૈ કે નહીં કરતે હૈ. વો અપને આપ હે पास आया कि अंदर आया कि नहीं आया वो अपने आप को ढूंढ लेना है, तलाश कर लेना है। हम तो पास में आ गए, हम तो इसमें आ गए, क्या संतोष पकड़ना है? ऐसा मान करके क्या संतोष पकड़ना है? तो पास में भी आया
नहीं है,
नहीं है जाओ। तो पास में भी नहीं आया है, संतोष पकड़ा तो पास में भी
नहीं आया,
नहीं आया। बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन 751 में दिया है, ये पत्रांक 751 है। वरना मुमुक्षु को ये निश्चय मोक्ष मार्ग वाली इतनी लंबी चौड़ी बात है, देखो ये 248 पेज से लेकर के 269 पेज है, 248 से लेकर 267 20 पेज में लिखा है उभयभाषी का, संक्षेप में लिखा है, फिर भी 20 पेज का प्रकरण लिखा है उभयभाषी का। तो उलझन में आ जाए क्या करेंगे, हाँ पाड़ते हैं तो हाथ कटता है, ना पाड़ते हैं तो नाक कटता है, करे क्या? निश्चय में जाते हैं तो निश्चयाभाषी, व्यवहार में जाते तो व्यवहार, दोनों करते तो उभयभाषी, करे क्या? अब तीसरा क्या करे, चौथा क्या करे, तीन में से चौथा क्या निकाले? वो निर्णय कर लेना अपने आप को, फिर प्रश्न रहेगा
नहीं,
नहीं। जो सत्पुरुष के चरण में आता है उसको क्या करना, वो फिर उसको उलझन रहती
नहीं,
नहीं है। उनको सर्वस्व मिल गया, क्या
सर्वस्व मिल गया?
उनको सर्वस्व मिल गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्रकार उसको आ जाता है। तो फिर उसको क्या करना वो बात नहीं रहती, वो सत्पुरुष का जितना इतनी प्रतीति है कि इनके वचन को झेलता है, सिर पे झेलता है, शिरोधार्य करता है, नीचे गिरने देता नहीं है। उसको ये पता है कि सत्पुरुष की आज्ञा को मैं झेलूंगा नहीं, और वो नीचे जाएगी तो पग से वो कुचल जाएगी तो बड़ा अपराध हो जाएगा। सत्पुरुष की आज्ञा पर, आज्ञा को कुचलना, पैर से कुचलना चाहिए
नहीं,
नहीं। तो उतनी गंभीरता आ जाती है उसमें, अपने प्रयोजन को ऐसा पकड़ता है वो, तो उसको उसको तो प्रतीति आ जाती है कि अब तो मैं तीर गया, मेरा मोक्ष हो गया, भावी निगम नहीं से मेरा मोक्ष
हो गया।
उसका मोक्ष वो भणका, मोक्ष का भणकार आ जाता है, तो अब क्या करा, क्या करना, क्या करना, वो बात उसको रहती
नहीं
है। ऐसी बात है राजू भाई। फिर उसको गड़बड़ रहती
नहीं है।
संसार में भी कोई करोड़पति अरबपति के आश्रय में जाता है, पर उसको विश्वास देता है कि हम तेरे पास खड़े हैं, तेरे को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे भी हो हम खड़े हैं, कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम खड़े हैं, तो निर्भय हो जाता है कि नहीं
हो जाता है,
है? तो यहाँ भी सत्पुरुष के चरण में आया उसको भाई कैसा, तो निर्भय हो ही जाएगा। जिसको भय रहा वो उसके चरण में गया
नहीं है,
वो बात है। बस तो बात खत्म, तो प्रतीति नहीं हुई उसको, तो सत्पुरुष को सत्पुरुष माना
नहीं
है, बात खत्म। ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सत्पुरुष को मानते नहीं है, मानने का आडंबर करते हैं, मानते हैं नहीं है, वो बात है। बात तो जुम्मेवारी वाली बात है ये, जितना आगे जाओगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती, हायर द पोस्ट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा ही होता है हमेशा।
चरण में आने वाले को लोक भय समाज भय सब, सत्पुरुष के चरण में आने वाले को लोक भय समाज भय सब
सब चला जाता है, सब कुछ नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है, सब तो भय में से एक भी भय नहीं रहता है। मौत का भी भय नहीं उसको, लुटाने का भय, चुराने का भय नहीं, अकस्मात का भय नहीं, पीड़ा का भय नहीं, कोई भय नहीं, ऐसी बात होती है।
लोक सुनना चाहिए
पूरी, लोक दृष्टि कोई चीज ही नहीं है, एक भ्रम है, कल्पना है, गड़बड़ है सब। वो गाथा का अर्थ कहते हैं, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। व्यवहार है वो अभूतार्थ, मैंने झूठा है, घी का घड़ा है ही नहीं, कथन झूठा है, तो सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। कोई अपेक्षा मैंने, कोई अपेक्षा मैंने सहचारी होने से, कोई उतनी भी अपेक्षा है कि व्यवहार के परिणाम सहचारी होने से उसका अन्यथा निरूपण चलता है। तथा शुद्धने जो निश्चय है वो भूतार्थ है, भूतार्थ मैंने सत्यार्थ है, सच्चा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपण वो करता है। ये निरूपण कथन की अपेक्षा से अर्थकथन किया है। कथन दो प्रकार के होते हैं, एक कथन अपेक्षा से और एक ज्ञान की परिणमन की प्रधानता के अपेक्षा से। उसको कथन नहीं और ज्ञान नहीं, दो प्रकार के नहीं कहे हैं, ज्ञान नहीं और कथन नहीं। ज्ञान नहीं वो ज्ञान का परिणमन है, और कथन नहीं है तो उसका नय का वचन, नय को वचन की परिभाषा में बताने का एक पद्धति है, उसको कथन नहीं कहने में आता है। वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। जैसे नियम सार में दृष्टांत लेवे कि केवल ज्ञान व्यवहार नहीं से लोका लोक को जानता है, और केवल ज्ञान निश्चय नहीं से अपने स्वरूप को जानता है। ये कथन नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां ज्ञान नहीं है नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान को नहीं होता नहीं, केवल ज्ञान को नहीं होता नहीं। लेकिन श्रुत ज्ञानी केवल ज्ञान कैसे जानता है उसका नए विभाग का कथन करता है, वो बात वहां चली है। ज्ञान नहीं अलग चीज होती है, कथन नहीं नहीं अलग चीज होती है। वो भी नहीं जाने तो फिर झगड़ा हो जाए, हम व्यवहार से ऐसा कहते हैं, हम निश्चय से ऐसा कहते हैं। ज्ञान नहीं है कि कथन नहीं है, बात क्या है, वो तो समझे नहीं, और फिर वाद विवाद हो जाए। हाँ, वो तो कथन, यहाँ कथन की बात चली है, निरूपण की बात चलती है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है, वो बात है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। कभी कथन नहीं और ज्ञान नहीं का कथन एक भी होता है, कभी अलग अलग भी होता है, तो क्या कहाँ एक है कहाँ अलग है वो भी पहचान होनी चाहिए, तब शास्त्र पठन करने का अधिकारी होता है, वरना शास्त्र स्वाध्याय का अधिकारी नहीं है। क्योंकि कहने वाला कहेगा कुछ और समझेगा कुछ और, ये बात हो जाएगी। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। तथा तू ऐसा मानता है कि सीध समान शुद्धात्मा का अनुभवन सो निश्चय, और व्रतशील संयमवादी रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। वो प्रवृत्ति को व्यवहार बताया, परिणमन को नहीं बताया, उधर अनुभवन परिणमन लिया, इधर प्रवृत्ति जो लिया है उसको व्यवहार बता दिया। क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा सिद्धांत लिखा है वो, कि ये एक द्रव्य, किसी एक द्रव्य भाव का नाम निश्चय और व्यवहार किसी दूसरे द्रव्य भाव का, ये बात नहीं है। किसी एक द्रव्य को उसी स्वरूप को कहना निश्चय और उसी को दूसरे स्वरूप को कहना व्यवहार है, ऐसी बात है। क्या फिर से अनुभवन को निश्चय को और वृत्तशील संयम के परिणाम को व्यवहार को, ऐसा नहीं है। अनुभवन को निश्चय कहो तो उसी अनुभवन को दूसरा अनुभव नहीं होते हुए भी अनुभव का नाम दिया जाए, उसी का नाम व्यवहार है, ऐसी बात है। निश्चय अलग व्यवहार अलग, ऐसी बात नहीं है। कथन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कथन तो उसी पर, जैसे कि निश्चय मोक्ष मार्ग है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, तो जो वृत्तशील संयम है उसी को भी दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम देना, उसी का नाम व्यवहार है। क्या मिट्टी के घड़ा को भी मिट्टी का घड़ा कहना वो निश्चय है, और मिट्टी के घड़ा को घी का घड़ा कहना वो व्यवहार है। एक ही द्रव्य का दो प्रकार से कथन होना, वो निश्चय व्यवहार का कथन की पद्धति है। तुमने तो बात दूसरा ले लिया, अनुभवन को निश्चय को वृत्तशील संयम को व्यवहार को, वो बात नहीं है। तुमको कथन पद्धति का भी पता नहीं है, जिनागम गए निश्चय व्यवहार की कथन पद्धति कैसी चली है उसका तुझे पता नहीं है, मैंने कथन की व्यवस्था का पता नहीं है, और शास्त्र समझ जो कथन पद्धति को समझे नहीं, और शास्त्र पढ़ ले अपने आप को, और शास्त्र की कथन पद्धति को तो समझता नहीं है, तो शास्त्र में से क्या निकालेगा कि अपनी कल्पना से निकालेगा, कुछ दूसरी बात कहने वाला कहेगा कुछ और, अपन निकालेगा कुछ और, ये बात हो जाएगी। देखो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है टोडरमल जी ने, तो ऐसा मानता है कि सीध समान शुद्धात्मा का अनुभवन सुनिश्चय, तो अपने वाले को ये बैठ जाएगा, हाँ ठीक बात है, अनुभव निश्चय मोक्ष मार्ग है और वृत्तशील संयम व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं है। वृत्तशील संयम को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहना वो व्यवहार है, ऐसी बात है, दोनों में अंतर है। क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और दूसरा किसी का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नहीं है, उपचार से उसी द्रव्य के भाव को, उसी द्रव्य भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े, वही दृष्टांत दिया है, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो तो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार, ऐसे ही अन्यत्र जानना, सब जगह दूसरी जगह भी ऐसा जानना जो है उसी को उसी स्वरूप में कहना हो तो निश्चय, और उसी को दूसरे रूप में कहना सो उपचार यानी व्यवहार। लेकिन एक को निश्चय कहना दूसरे को व्यवहार कहना, ये कथन पद्धति बराबर है नहीं, ऐसी बात है। ये बहुत स्पष्टीकरण अच्छा दिया है, शास्त्र पढ़ने में सावधानी रखना है, वरना हम अभ्यावासी में चले जाएंगे तो हमको पता लगेगा नहीं, क्योंकि हम तो मानेंगे, हम तो निश्चय को भी मानते हैं व्यवहार को भी मानते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए तो किसी को निश्चय माने और दूसरा किसी को व्यवहार माने, वो तो निश्चय व्यवहार दोनों का तेरा भ्रम हो गया, वो भी आभासी हो गया, वो दोनों का भ्रम हो गया। हम आगे जो दूसरी दूसरी अपेक्षाएं हैं वो बताएंगे।
जय हो परम कृपा।